नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेम्स एल स्वानसन की मैनहंट, द 12 डे चेज फॉर लिंकन्स किलर, अमेरिकी इतिहास, राजनीतिक हिंसा और खोजी अपराध वृत्तांत का संयोजन है। पुस्तक अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद जॉन विल्क्स बूथ को पकड़ने के लिए चली 12 दिनों की राष्ट्रीय तलाश को क्रमवार ढंग से प्रस्तुत करती है। इसका केंद्र केवल हत्या का क्षण नहीं, बल्कि उसके बाद पैदा हुआ प्रशासनिक संकट, शोक, अफवाहें और न्याय की तात्कालिक मांग है। स्वानसन बूथ की दक्षिण की ओर भागने की यात्रा और युद्ध मंत्री एडविन स्टैंटन के नेतृत्व में संघीय प्रतिक्रिया को समानांतर रूप से रखते हैं। इस संरचना से पाठक समझता है कि गृह युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद देश की राजनीतिक स्थिरता कितनी नाजुक थी। यह अकादमिक इतिहास ग्रंथ की तरह केवल व्याख्या नहीं करता, बल्कि सत्यापित घटनाओं को तेज गति वाले नैरेटिव में संगठित करता है। पुस्तक का उद्देश्य लिंकन की हत्या को एक अलग त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण, सत्ता की निरंतरता और सार्वजनिक स्मृति को बदल देने वाली घटना के रूप में समझाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले 12 दिनों की समय रेखा से राष्ट्रीय संकट का पुनर्निर्माण पुस्तक की सबसे प्रभावी पद्धति हत्या के बाद के समय को दिन दर दिन व्यवस्थित करना है। यह ढांचा घटना को पहले से ज्ञात परिणामों वाली जीवनी की तरह नहीं रहने देता। पाठक के सामने लगातार बदलती सूचनाएं, गलत सुराग, सीमित परिवहन और अलग अलग सरकारी इकाइयों की प्रतिक्रियाएं आती हैं। इस प्रकार 12 दिन केवल बूथ के भागने की अवधि नहीं रहते, वे उस समय की राज्य क्षमता की परीक्षा बन जाते हैं। गृह युद्ध के अंत की थकान, संचार की सीमाएं और व्यापक जनाक्रोश हर निर्णय को कठिन बनाते हैं। स्वानसन दिखाते हैं कि तत्कालीन जांचकर्ताओं को आज की पुलिस तकनीक, त्वरित तस्वीरों के प्रसार या केंद्रीकृत डिजिटल अभिलेखों का लाभ नहीं था। फिर भी टेलीग्राफ, सैन्य नियंत्रण और स्थानीय गवाहियों के सहारे एक विशाल खोज अभियान बनाया गया। समय रेखा का दूसरा लाभ भावनात्मक है। लिंकन की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक और हत्यारे की खोज साथ साथ चलती है, इसलिए न्याय की मांग को शांत, निष्पक्ष वातावरण में लिया गया निर्णय मानना भ्रामक होगा। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि संकट में प्रशासन को अधूरी जानकारी पर भी कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन उसकी वैधता अंततः प्रमाण, प्रक्रिया और जवाबदेही पर निर्भर रहती है। दूसरा, जॉन विल्क्स बूथ की विचारधारा और राजनीतिक हिंसा का संदर्भ। स्वानसन बूथ को केवल एक सनकी अकेले अपराधी के रूप में सीमित नहीं करते, वे उसके अभिनय पेशे, दक्षिण समर्थक राजनीति, लिंकन के प्रति शत्रुता और युद्धोत्तर निराशा के संदर्भ में उसकी भूमिका देखते हैं। यह संदर्भ हत्या को उचित नहीं ठहराता, बल्कि बताता है कि राजनीतिक भाषा, पराजय की भावना और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किस तरह हिंसक कल्पना में बदल सकती हैं। बूथ ने लिंकन के अपहरण की योजना पर भी विचार किया था और बाद में हत्या को व्यापक राजनीतिक प्रहार के हिस्से के रूप में अपनाया। इस बदलाव से पुस्तक राजनीतिक हिंसा की एक महत्वपूर्ण विशेषता उजागर करती है। लक्ष्य अक्सर केवल व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही व्यवस्था होती है। बूथ की प्रसिद्धि पाने की इच्छा भी उसके राजनीतिक दावों से अलग नहीं है। वह अपने कृत्य को नाटकीय सार्वजनिक प्रदर्शन की तरह देखता था, जबकि उसका परिणाम राष्ट्रीय शोक और कठोर दमनकारी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। पुस्तक पाठक को विचारधारात्मक चरमपंथ के सरलीकृत स्पष्टीकरण से बचाती है। निजी अहम, सामाजिक नेटवर्क, ऐतिहासिक क्षण और राजनीतिक विश्वास एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हिंसा को समझने के लिए अपराधी के घोषित उद्देश्य के साथ उसके अवसर, सहयोग और सूचना संसार को भी देखना आवश्यक है। तीसरा, एडविन स्टैंटन और आपातकालीन शासन की जिम्मेदारी। मैनहंट में एडविन स्टैंटन केवल पृष्ठभूमि के सरकारी अधिकारी नहीं है। लिंकन की हत्या के बाद वे शोकाकुल प्रशासन, सैन्य संसाधनों और जांच की परस्पर विरोधी जरूरतों को संभालने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। पुस्तक उनके माध्यम से यह प्रश्न उठाती है कि नेतृत्व निजी दुख के बीच सार्वजनिक कर्तव्य कैसे निभाता है। एडविन स्टैंटन को राष्ट्रपति की मृत्यु की पुष्टि, सुरक्षा व्यवस्था, संदिग्धों तक पहुंचने वाली सूचनाओं और देश में फैलती आशंकाओं का सामना करना पड़ता है। उनकी भूमिका दिखाती है कि संकट प्रबंधन में निर्णायकता जरूरी है, पर उसके साथ विश्वसनीय सूचना और संस्थागत समन्वय भी चाहिए। खोज अभियान सेना, अधिकारियों और स्थानीय संपर्कों पर निर्भर था, इसलिए आदेश देना भर पर्याप्त नहीं था। सूचना को छांटना, प्राथमिकताएं तय करना और लगातार बदलते सुरागों के अनुरूप प्रतिक्रिया देना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। पुस्तक स्टैंटन को आदर्शीकृत प्रशासक की तरह प्रस्तुत करने के बजाय उस दबाव का प्रतिनिधि बनाती है, जिसमें गलत निर्णय की राजनीतिक और नैतिक कीमत बहुत बड़ी हो सकती थी। आधुनिक पाठक के लिए यहां व्यावहारिक संकेत स्पष्ट है। सार्वजनिक संकट में नेतृत्व का मूल्य केवल भावनात्मक वक्तव्यों से नहीं बल्कि संगठन, संचार और प्रमाण आधारित निर्णयों से तय होता है। साथ ही न्याय की इच्छा को प्रतिशोध से अलग रखना राज्य की विश्वसनीयता की मूल शर्त है। चौथा, भागने का मार्ग, स्थानीय सहायता और जांच की सीमाएं। बूथ की तलाश को केवल राजधानी से चलाया गया सीधा पीछा समझना गलत होगा।
पुस्तक उसके दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग को इस तरह रखती है कि भूगोल, स्थानीय परिचय और व्यक्तिगत संपर्क जांच के निर्णायक तत्व बन जाते हैं।
भागते हुए व्यक्ति को आश्रय, दिशा, भोजन, घोड़े या खबर की जरूरत होती है। इसलिए खोजकर्ताओं के लिए प्रश्न केवल यह नहीं था कि बूथ कहाँ है, बल्कि यह भी था कि किन लोगों को उसकी गतिविधियों का पता हो सकता है और कौन अनजाने में उसकी मदद कर सकता है।
इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण रास्ते, नदी पार करने के साधन और युद्ध से विभाजित समुदाय महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
गृह युद्ध के बाद की निष्ठाएं एक समान नहीं थीं, जिससे अधिकारियों के लिए सहयोग और सहानुभूति के बीच अंतर करना कठिन था।
पुस्तक यह भी दिखाती है कि हर संपर्क को अपराध में समान भागीदारी मानना जांच को कमजोर कर सकता है।
गवाही की विश्वसनीयता, भय, अफवाह और व्यक्तिगत हितों की जांच आवश्यक थी।
इस आयाम का महत्व इसलिए भी है कि यह अपराध के बाद मौजूद सामाजिक तंत्र को सामने लाता है।
बड़े राजनीतिक अपराध अक्सर किसी एक क्षण की कार्रवाई होते हैं, लेकिन अपराधी का बच निकलना अनेक छोटे निर्णयों और संबंधों पर निर्भर करता है।
स्वानसन की पुनर्रचना से जांच की सफलता को केवल वीरतापूर्ण पीछा नहीं बल्कि धैर्यपूर्ण सूचना संग्रह और स्थल की समझ का परिणाम माना जा सकता है।
अंत में, हत्या के बाद न्याय, प्रतिशोध और राष्ट्रीय स्मृति का तनाव। लिंकन की हत्या ऐसे समय हुई जब संघ युद्ध से निकलकर पुनर्निर्माण की दिशा तय कर रहा था,
इसलिए बूथ की गिरफ्तारी या मृत्यु का प्रश्न महज अपराध न्याय का विषय नहीं था।
जनता के लिए यह संघ की ताकत, शहीद राष्ट्रपति की स्मृति और भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ गया था। मैनहंट इस तनाव को प्रभावी ढंग से सामने लाती है। एक ओर हत्यारे को जल्दी खोजने का तीव्र दबाव था, दूसरी ओर षड्यंत्र के वास्तविक दायरे और सहयोगियों की जिम्मेदारी स्थापित करने की जरूरत थी। भावनात्मक रूप से उग्र वातावरण में कानूनी प्रक्रिया की मांग कभी कभी धीमी या अपर्याप्त प्रतीत हो सकती है,
लेकिन पुस्तक के घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि प्रमाण और उत्तरदायित्व के बिना व्यापक दोषारोपण न्याय नहीं बनता।
लिंकन की मृत्यु ने उनके राजनीतिक प्रतीक को भी बदल दिया। जीवित नेता के रूप में जिन नीतियों पर विवाद था, मृत्यु के बाद वे राष्ट्रीय एकता और मुक्ति की स्मृति से अधिक गहराई से जुड़ गए।
बूथ का उद्देश्य व्यवस्था को झटका देना था, पर उसका कृत्य उसके अपने राजनीतिक लक्ष्य के विरुद्ध भी गया।
इस विडंबना से पुस्तक का व्यापक निष्कर्ष निकलता है।
राजनीतिक हत्या किसी राष्ट्र की बहस को समाप्त नहीं करती, बल्कि अक्सर संस्थाओं, स्मृतियों और सामाजिक विभाजनों को नए तथा अधिक कठिन रूपों में सामने ले आती है।
निष्कर्ष में, मैनहंट उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अब्राहम लिंकन, अमेरिकी गृहयुद्ध के अंतिम चरण, राजनीतिक हत्या या ऐतिहासिक अपराध वृत्तांत में रुचि रखते हैं। इतिहास के नए पाठकों के लिए इसकी क्रमवार संरचना घटनाओं को समझने योग्य बनाती है, जबकि गंभीर पाठकों को यह प्रशासनिक निर्णयों, संचार की सीमाओं और युद्धोत्तर राजनीतिक तनाव पर विचार करने का ठोस आधार देती है।
शिक्षक और चर्चा समूह भी इसे तथ्य, नैरेटिव और सार्वजनिक स्मृति के संबंध पर बातचीत शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह संकट में जांच की वास्तविक कठिनाइयों को दिखाती है। अधूरी सूचनाओं, अफवाहों और जनदबाव के बीच संस्थाएं किस तरह काम करती हैं, यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है।
बौद्धिक रूप से इसका योगदान लिंकन की हत्या को केवल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक दृश्य के बजाय उसके परिणामों सहित देखने में है।
इसी कारण यह केवल बूथ की जीवनी या हत्या का विवरण नहीं बनती।
समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में स्वानसन की विशिष्टता तेज, दिनानुक्रमिक कथन और व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ के संतुलन में है।
वे पीछा करने की गति बनाए रखते हुए स्टैंटन की जिम्मेदारियों, बूथ के राजनीतिक उद्देश्यों और न्याय की जटिलताओं को जोड़ते हैं।
पाठक को यहाँ रोमांचक प्रस्तुति मिलती है, पर उसका आधार एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने अमेरिकी लोकतंत्र की असुरक्षाओं और उसकी संस्थागत सहन शक्ति दोनों को उजागर किया।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेम्स एल स्वानसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें।
फिर मिलते हैं।